अजीज दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 23 नवंबर 2016 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के लिए मैंने जो विषय चुना है वो कल की तुलना में कई गुना ज्यादा रोचक विषय है। कल की तुलना में मैं इसलिए कह रहा हूं, कल हम लोगों ने साउंड ऑफ साइलेंस पर बात की थी, जो थोड़े से दार्शनिक अंदाज का सब्जेक्ट था और वो आपको काफी कुछ उबाऊ भी लगा होगा, अविश्वसनीय भी लगा होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आज जो मैंने सब्जेक्ट चुना है, बिल्कुल उसके साथ ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा मित्रों इसके साथ ऐसा। और आज का जो सब्जेक्ट है वो कुछ प्रेम व्रेम जैसे मामलों को लेकर है। माफी चाहूंगा कि मैं व्रेम शब्द का भी इस्तेमाल कर रहा हूं मित्रों, मैं जानबूझ कर रहा हूं। दोस्तों, मैं कुछ ऐसा महसूस कर रहा हूं कि पिछले कुछ समय से एक बार फिर मेरे पास जो ईमेल आ रहे हैं उसमें प्रेम प्रसंगों के असफलताओं की कहानियां कुछ ज्यादा ही पढ़ने को मिल रही हैं। सच पूछे तो 2-3-4 साल पहले इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा मेरे सामने आने लगी थी और मैंने फिर उन्हीं बातों को ध्यान में रख कर एक किताब लिखनी जरूरी समझी और मैंने लिखी भी वो किताब, और उस किताब का शीर्षक है प्रेम की समझ। मित्रों, पहली बात तो यह कि मैं सभी स्टूडेंट से जो इसमें कहीं न कहीं भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, फंसे हुए हैं, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस किताब को पढ़िए। देखिए, इस किताब का नाम है प्रेम की समझ। इसको समझने की कोशिश कीजिए। प्रेम के उपाय नहीं है, प्रेम से छुटकारा के उपाय नहीं है, प्रेम में कैसे पढ़ने से बचें, ये इस तरह किसका शीर्षक इस किताब का नहीं है। इस किताब का शीर्षक ही है समझ, कि आप इसको समझिए। क्योंकि प्रेम एक स्वाभाविक चीज है, उसको हम होने से नहीं रोक सकते, यहां तक कि करने से भी नहीं रोक सकते। यूं कह लीजिए कि प्रेम में पड़ने से भी शायद हम अपने आप को नहीं रोक सकते, लेकिन यदि हम उसको समझ जाते हैं तो अपने को बर्बाद होने से रोक सकते हैं, चोट लगने से रोक सकते हैं, भटकने से रोक सकते हैं, क्योंकि हम समझ गए हैं। तो मित्रों, मेरी पहली रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट आप लोगों से यह है कि प्लीज इस किताब को पढ़िए। यह किताब आपको रोशनी देगी, सही रास्ता दिखाएगी, आपके अंदर एक सही दृष्टि पैदा करेगी, एक सोच पैदा करेगी, एक ऐसी चीज के प्रति सोच पैदा करेगी जो इनफैक्ट होता ही है, सबके साथ होता है। मित्रों, फर्क इतना ही है कि हम सब चल रहे हैं, चलते ही रहेंगे क्योंकि चलना ही है, लेकिन जिन्हें रास्ता मालूम होता है वो भटकते नहीं है और जिन्हें रास्ता मालूम नहीं होता है वो भटक जाते हैं। बस फर्क इतना ही है, चलना तो है। दोस्तों, ये जहां तक प्रेम की बात है, देखिए सामान्य तौर पर मैं एक शब्द की तरफ आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूंगा, वो है प्रेम करना और प्रेम में पड़ना। सच पूछिए तो हमें लगता है कि हम प्रेम कर रहे हैं, सच ये होता है कि हम प्रेम में पड़ जाते हैं। अगर आप मध्यकाल का साहित्य पढ़ें, खासकर रीतिकालीन साहित्य, हिंदी के स्टूडेंट, जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, मेरी इस बात को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यदि भक्तिकाल के पास पास यदि रीतिकालीन कवि हुए हैं, उन्होंने प्रेम पर बहुत कविताएं लिखी हैं, प्रेम पर, विरह पर, सौंदर्य पर खूब कविताएं लिखी हैं। उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया है वह प्रेम में पड़ना। करना और पड़ना में क्या फर्क है? करना तो यह है कि हम करने से पहले खुद थोड़ा सा सोचते हैं, समझते हैं, तब करते हैं, या उसमें हम शामिल होते हैं तभी करते हैं। मुझसे कोई जबरदस्ती तो कुछ नहीं करा सकता, मैं करना चाहूंगा तभी करा सकता है। लेकिन पढ़ना एक ऐसी चीज होती है जहां मैं बेवश होता हूं, जहां मैं असहाय होता हूं, पड़ जाता हूं। नहीं चाहता कि मैं पढ़ूं लेकिन पड़ जाता हूं, गिर जाता हूं, जो भी आप कह लीजिए, वो मेरे वश में नहीं है। मैं बेवश हूं, मैं लाचार हूं। सच पूछे दोस्तों तो प्रेम कुछ इसी तरह की चीज है जहां कहीं ना कहीं लाचारी आ जाती है, और इन सारी लाचारियों के बड़े बड़े प्योरली साइंटिफिक रीजन है, हार्मोनल चेंजेस। ये कोई आध्यात्म नहीं उतर रहा है हमारे हृदय में और मस्तिष्क में और हमारी चेतना में, हमारे शरीर में कुछ नहीं हो रहा है, केवल हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जब हम पैदा हुए थे तब तो दाढ़ी मूछ नहीं थी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम में दाढ़ी मूछ क्यों आने लगी? क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। उसी तरह से यह प्रेम भी उतरने लगा। जब यह प्रेम उतरने लगा तो हम उसमें पड़ने लगे, उसमें गिरने लगे। मित्र तो अब क्या करें, हम तो बेबस हैं, कुछ कर नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? यदि आप इस गिरने को समझ जाएं तो आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक गड्ढा है, बहुत ही खतरनाक गड्ढा है। एक तो आप नहीं जानते थे कि वहां गड्ढा है, जा रहे थे और अचानक गिर गए। उस चोट को, उस हादसे को आप अपने दिमाग में लाइए। और दूसरी सिचुएशन यह है कि आपको मालूम है कि वहां गड्ढा है, पहले से मालूम है, आपको मालूम है कि उसमें पहले भी लोग गिर चुके हैं, उसमें गिरते ही हैं, गिरना ही है। आप भी जा रहे हैं, आप भी उसमें गिर गए। तो अब इसके बारे में सोचिए, क्या दोनों में कुछ फर्क है? आपको लगेगा कि हां फर्क है। जब आप अचानक गिर जाते हैं तो चोट बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि आपकी कोई तैयारी ही नहीं है उस चोट को बर्दाश्त करने की। लेकिन जब आप पहले से जान रहे हैं और गिर गए हैं, तो आप पहले से जानते थे कि मैं गिरूंगा, तो बहुत गिरे भी हैं तो संभल कर गिरे हैं, तो हो सकता है चोट ही न लगे। और अगर चोट लग भी गई तो हो सकता है इतनी ही लगे कि आप उठकर तुरंत फिर खड़े हो जाएं, कुछ दिनों में संभल जाएं। तो मित्रों, क्या आपको नहीं लगता कि गिरना अगर है ही तो ये सेकेंड तरह का गिरना शायद हम सबके लिए ज्यादा अच्छा गिरना है? हम उसे जान लें, हम उसे समझ लें। और जैसे ही आप जान और समझ लेते हैं मित्रों, तकलीफ कम हो जाती है। कम क्या, सच पूछे तो मुझे तो कभी कभी यह भी लगता है कि तकलीफ होती ही नहीं है। और मुझे सच में पूछे तो हो सकता है कि आप सब मुझे इसमें दोष दें या मेरी बातों से सहमत न हो, मुझे इसके लिए मुझे जिम्मेदार भी ठहराएं कि यह आदमी ठीक नहीं है, इसका लाइफ मैनेजमेंट सुनना बंद करो। वो आपकी मर्जी है मित्रों, मैं तो केवल अपनी राय दे रहा हूं। इसमें पछताना क्या, इसमें रोना क्या, इसमें दुखी होना क्या? मान लीजिए कि मैं किसी से प्रेम कर रहा था, मेरा प्रेम टूट गया, ठीक है, टूटने का कोई ना कोई तो रीजन होगा। वैसे ही तो नहीं टूट गया, रीजन है, टूट गया। अब मैं रो रहा हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, मुझे पूरी दुनिया सूनी लग रही है, मुझे जिंदगी बेकार लग रही है, ऐसा होने लगता है। मेरा एक प्रश्न है केवल, अगर वह प्रेम जो प्रेम के दौरान ही टूट गया, यदि वह शादी में कन्वर्ट हो चुका होता, तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि वो बना रहता, वो टूटता नहीं? दोस्तों, आप परसों हुए एक ट्रेन एक्सीडेंट को आप याद कीजिए ना। ट्रेन एक्सीडेंट, एक खामी आई उसमें। इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि उस खामी को वहां ठीक नहीं किया गया। जो गड़बड़ी हुई थी, अगर उस गड़बड़ी को वहां ठीक कर लिया जाता तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता। तो मुझे तो लगता है कि प्रेम का टूट जाना, इस प्रकार संबंधों में एक खामी का आ जाना है, एक विकार का आ जाना है, और यह बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है कि वह हमें सतर्क कर रहा है कि देख लो, चीजें ऐसी हैं। क्या इस सेतु पर पूरी जिंदगी की यात्रा की जा सकती है? क्या जुड़ा जा सकता है? क्या अगर इन छोटी छोटी चीजों से टूटन हो सकती है तो फिर आगे क्या होगा? अगर शादी हो गई, शादी का तो मतलब है अधिकार। और सच पूछे तो जो कहते हैं कि प्रेम असफल हो गया, प्रेम टूट गया, उसने मुझको धोखा दे दिया, उसका मतलब क्या होता है? मतलब तो बहुत साफ है कि वो मुझसे छोड़ करके अब दूसरे से जुड़ गया है, मुझसे शादी न करके दूसरों से शादी करने जा रहा है, यही तो मतलब है इसका। और क्या मतलब है? और क्या धोखा दिया है किसी ने एक दूसरे को? चाहे लड़का लड़की को धोखा दे या लड़की लड़के को धोखा दे, होते तो दोनों तरफ से ही चीजें हैं। तो मुझे तो लगता है कि अच्छा है, जो चीज बाद में होनी थी वो अभी हो गई, क्योंकि अभी हो गई तो इसकी भरपाई हो जाएगी, रिपेयर हो जाएगा। लेकिन अगर बाद में होता तो अनरिपेयरेबल है, वो इरिपेयरेबल है, वो तो रिपेयर हो ही नहीं सकता था, फिर तो पूरी जिंदगी ही गड्ढे में गिर गई। हम इस रूप में क्यों नहीं सोचते? मुझे लगता है मित्रों, हो सकता है कि मैं गलत हूं, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा, और यदि मैं गलत हूं तो मैं तो इस मामले में बहुत ओपन हूं। आप लोगों की राय खुले रूप में आमंत्रित है, मुझे आप सही करें। मतलब मैं तो जिंदगी को कम से कम इसी नजरिए से देखता हूं, क्योंकि जिंदगी न तो कल्पना है न सपना है, जिंदगी तो वह है जो ये है। जिंदगी धरती पर है, जिंदगी सितारों में नहीं है, जिंदगी अच्छे खासे ऊबड़ खाबड़ जमीन के टुकड़े पर स्थित है, आसमान में उड़ नहीं रही है, अंतरिक्ष में तैर नहीं रही है, वो सितारों के बीच सो नहीं रही है, वो चंद्रमा के ऊपर सैर नहीं कर रही है। जिंदगी है और अच्छे खासे धरती के टुकड़े पर है जो ठोस है। जिंदगी इम्तहान लेती है, वो मांगेगी ही, और ये सब जिंदगी के छोटे छोटे इम्तहान है। तो क्या कहना कि उसने मुझे धोखा दे दिया, क्या कहना कि वो मेरे इमोशंस के साथ खेल रहा है। मित्रों, मुझे तो लगता है कि जब कोई मेरे इमोशंस के साथ खेलता है तो कैसे खेल सकता है मेरी इजाजत के बिना। अब कैसे मैं किसी को अपने इमोशंस के साथ खेलने दे सकता हूं, तब तक जब तक कि मैं खुद भी उस खेल में शामिल ना हूं, मुझे खुद भी वो अच्छा न लग रहा हो। तो अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो ठीक है, जब तक अच्छा लग रहा है तब तक ये खेल चला, और जब अच्छा किसी एक को भी अच्छा लगना बंद हुआ, खेल खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब मैं दूसरे को ब्लेम करता हूं तो मुझे अपनी तरफ भी देखना चाहिए कि क्या उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अगर मैं भी जिम्मेदार हूं तो फिर ब्लेम कैसा। तो ये बात क्यों दिमाग में नहीं आती है मित्रों? ये बात दिमाग में सिर्फ इसलिए नहीं आती है क्योंकि हम दुनिया को तो दोषी ठहराने में माहिर हैं, उसमें गोल्ड मेडल मिला हुआ है, लेकिन अपनी तरफ जरा सी भी उंगली उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। बस कारण यही है। और जिस दिन ये साहस आ जाता है, आप देखिए, हम सुधरना शुरू हो जाते हैं, मजबूत होना शुरू हो जाते हैं, आत्मविश्वास आना शुरू हो जाता है, शरीर एक और दिमाग एक अलग किस्म की ऊर्जा एक अलग किस्म के ताप से भरने लगता है, चेहरा दमकने लगता है और शरीर गतिशील हो उठता है, क्योंकि हमें सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, हम सुधरने लगते हैं, हमें एक रिफॉर्म आने लगता है। या हो सकता है कि कुछ ऐसा ही हो जाए कि अचानक कोई क्रांति घटित हो जाए और हम एकदम से ही बदल जाएं, जैसे कि धरती के अंदर से कोई ज्वालामुखी फूट पड़ा हो और देखते ही देखते वहां ऊर्जा से भर गया पूरा का पूरा वातावरण। ऐसा भी होता है। घटनाएं कैसी हैं, किस तरह की हैं, हम उसे कैसे लेते हैं, निर्भर सब इन बातों पर करता है। तो मित्रों, मैं खासकर पिछले समय से ये जो बार बार इस तरह के टॉपिक जो मेरे सामने आ रहे थे उनको लेकर के कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था, आज मैंने शेयर किया है। यदि मुझे कुछ और जरूरत महसूस हुई तो मैं आगे भी इसके लिए शेयर करूंगा। मुझे मालूम है कि मेरी ये बातें उन लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी जो इसमें पड़े हुए हैं, इसके दुख को महसूस कर रहे हैं, वो मेरी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं होंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता सहमति की है ही नहीं। मित्रों, अगर संवेदना चाहिए, सहानुभूति चाहिए, तो मेरी संवेदनाएं और सहानुभूति भी ऐसे के साथ हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि उससे कुछ होगा नहीं। होगा तो मरहम लगाने से, दवाई देने से, और दवाइयां हमेशा ज्यादातर कड़वी ही होती हैं। लेकिन मैं आपको यकीन तो दिला सकता हूं, इनके इलाज हैं, बहुत सरल इलाज हैं, दवाई थोड़ी सी कड़वी जरूर है लेकिन असरदार है। आप सोच कर देखें, मेरी बातों को आउटराइट रिजेक्ट न करें, थोड़ा सा उस पर विचार करें, एक बार नहीं तो दो बार नहीं तो तीन बार, और इसके बाद भी अगर मेरी बात बेकार लगती है तो यह आपका अधिकार है कि आप इसे आउटराइट रिजेक्ट कर दें। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।